समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में श्रोताओं, मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार अतहर, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड एज ऑलवेज वी हैव फॉर All of you, a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 32nd International Conference of Agricultural Economists, says India is a food surplus country working to provide solutions for global food security.
केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में तलाशी अभियान पांचवें दिन भी जारी। सेना मलबे में गहरे नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू करेगी।
इन बांग्लादेश क्वोटा प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम टुमारो टू प्रेस देयर 9-पॉइंट डिमांड्स।
पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमरीका ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया।
And in Paris Olympics, the Manu Bhakar finishes fourth in final of women's 25 meters pistol. Other Indian athletes to feature in archery, boxing, sailing and golf events. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global levels. Today we will talk about 32nd International Conference of Agricultural Economists and Indian Organ Donation Day. Prime Minister Narendra Modi has said that India is a food surplus country and engaged in providing solutions for global food security and global nutrition security. He said the government is strengthening the agricultural sector with the reforms and measures aimed at improving the lives of the farmers. Addressing the 32nd International Conference of Agricultural Economists in New Delhi today, Mr. Modi said agriculture is the center of the government's economic policy. He said India is the largest producer of millets, milk, pulses and spices.
Anita, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा निर्माता है, उत्पादक देश है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फार्म फिश, इन सबका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय माना जाता था। एक आज का समय है, यानी दोनों समय की तुलना अगर हम जब करें तो जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और इसके सॉल्यूशन देने में आज जुटा हुआ है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुत बहुमूल्य हैं और इसका बड़ा लाभ विशेषकर ग्लोबल साउथ को मिलना बिल्कुल तय है। अनिता, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर में है। हमारे यहां करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है और ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी शक्ति है और यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। जैसे कि एक उदाहरण है सस्टेनेबल फार्मिंग का। भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं और अनिता, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेसिलियंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत ज्यादा जोर क्लाइमेट रेसिलियंट कॉर्प से जुड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट पर है और बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेसिलियंट वैरायटीज अपने किसानों को दी है। ये बहुत बड़ी बात है और इसका लाभ अनिता भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां चावल की कुछ जो किस्में हैं वो ऐसी हैं जिनको ट्रेडिशनल वैरायटीज के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी बात है और हाल के वर्षों में हमारे यहाँ ब्लैक राइस सुपरफूड के रूप में उभरा है। हमारे यहाँ मणिपुर, असम, मेघालय की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और भारत इनसे जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है। अनीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
आज भारत एक फूड सरप्लस देश है, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, सुगर, टी, फ्रेम्ड फिश इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है।
And the 14th Indian Organ Donation Day is also being observed across the country today to mark the National Organ and Tissue Transplant Organization, that is NOTTO, under the Ministry of Health and Family Welfare, organized an organ donation awareness program in New Delhi. Other on the occasion, Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, felicitated the families who donated organs of their family members after being declared brain dead. She also felicitated the recipients of donated organs and doctors across the country for successful organ transplantation. She said that the organ donation rate has increased 4 times to 18,378 in the last 10 years. Ms. Patel lauded the efforts of doctors and families for their decision to donate organs.
अनीता, अंग दान को अगर मैं महादान कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज के दौर में अगर किसी के लिए अंग दान करके यदि हम जाते हैं इस दुनिया से तो हमारे अंगों से कितने लोगों को जीवन मिल सकता है, इसकी कल्पना करके देखें तो अंग दान करना बहुत जरूरी है। बहरहाल, इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉ वीके पॉल ने अंगदान के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशभर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से आग्रह किया कि वे अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं प्रदान करें। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए नॉटो के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने अंगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अंगदान करने के लिए आगे आएं और दूसरों की जान बचाएं।
अंगदान महादान है, अंगदान हमारी सदियों से परंपरा भी है दान की, तो अंगों का दान करके जाते जाते भी हमें, और आप जान ही रहे हैं, आप एक व्यक्ति जो दान कर रहा है वो कई अन्य शरीरों में जीवित रहता है, तो आप ये समझिए वो गया तो एक शरीर लेकिन वो 8 अन्य शरीरों में जीवित रहते हैं उसके अंग। तो जो चीज हम साथ नहीं ले जा सकते स्वर्ग में, सिर्फ आत्मा जाती है, तो जो अंग हमें यहां मिले हैं उनको यहीं पे हम अगर दान करके चले जाएंगे, और टिश्यूज जो दान है वो आप 6 घंटे के अंदर मृत्यु उपरांत कर सकते हैं। इसमें नोटो का एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी है 1800114770। इस पे कोई भी जानकारी चाहिए वो आप कर सकते हैं। कोई जो पंजीकरण कराना चाहता है कि वो अपनी इच्छा का अंगदान की पंजीकरण कराना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है noto.abdm.gov.in, उस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए पंजीकरण से विषय में वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से अभी तक हमने पिछले साल से ये मुहिम जो पंजीकरण चालू किया था उसमें अभी तक 1.7 लाख जो कि वॉलंटरी आकर के जुड़ गए हैं, तो इतने लोग अंगदान की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
ब्रेन स्टेम मृत्यु और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अंगदान से जुड़े मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने और देश के नागरिकों को मृत्यु के बाद अंगों और ऊतकों को दान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए 2010 से हर साल भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। अनीता,
The vibrant 3 days Chikhal Kalo Festival of Goa concluded on 18th of July on the auspicious day of Acharya Ekadashi. It was full with a spectacular array of activities at the Sri Devaki Krishna Temple ground, Marcel, in Goa. We have a report.
The festival of Chikhal Kalo has significantly contributed to the spiritual essence of Goa's culture and traditions in India. With a large number of participants, the festival of Chikhal Kalo has captured the hearts of local and tourists alike with the traditional mud play that has been part of the celebration for many generations. By integrating the cultural heritage with the sustainable tourism practices, the Chikhal Kalo festival complements the Department of Tourism's efforts of regenerative tourism and Goa beyond beaches.
Chikhal Kalo is a religious festival exclusive to the village of Marcel in Goa, held within the grounds of Devaki Krishna Temple. It is celebrated annually on the 11th day of the Hindu month of Ashad. Festival started on 16 July with cultural programs, while the main event of playing in mud took place on July 18th in front of Sri Devaki Krishna Temple in Marcel. Due to the arrival of monsoon, temple premises get transformed into muddy grounds, which is a vital component of creating excitement. The festival is celebrated in the form of dancing in the mud, and traditional games like Chendu Fali and Gili Danda add to the enjoyment of Chikhal Kalo.
The Chikhal Kalo festival is a rare combination of devotion and enjoyment. This celebration venerates the profound bond shared between the farming community of Goa and Mother. It encourages the sustainable development of the region. Tushar Jadhav for Parikrama. From Akashwani Panaji, Goa.
And from Goa, we go over to Kathmandu, where the Nimori community in Kathmandu Valley celebrates Gathe Mangal every year on the 14th day of the waning moon in the monsoon Shravan month. This cultural heritage has been practiced in Kathmandu Valley since the Lichavi period. Here is a report from our special correspondent in Kathmandu.
On the 14th day of waning moon in Shravan month of Vikram Samvat, which falls in monsoon season, one can see people engaged in making demonic effigy from narkat grass, bamboo and neem leaves in every major crossroads of Kathmandu Valley. Member of every Nevari household wears iron rings on the fingers on Ghate Mangal and insert 3-pin iron nails at the entrance of their houses. This ensures that evil spirits do not harm them, assuming evil spirits fear iron metal. People in various communities gather together to burn a straw effigy of a demon, Ghantakarna. People add a face to the puppet. The demon is put up at crossroads and burnt after sunset. The burning of an effigy symbolizes the burning of the demonic presence in the society. In the evening, imposters dress like demons and paint their bodies. A torch bearer flanks him and the imposter goes around the human colonies begging for food and mercy. Later on, the imposter circles the demon effigy thrice and the effigy is dragged through the lanes to the nearest stream or river. Here, effigy is set on fire. This is a male-dominant tradition where all rituals are done by men. Ghate Mangal is similar to Halloween celebrated in some parts of the world. The ritual is carried out recognizing the existence of evil spirits and warding them off. Shweta Singh for Akashwani Samachar, Kathmandu.
And now we go over to the Union Territory of Jammu and Kashmir, where Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated the J&K Film Conclave organized by the Department of Information and Public Relations, DIPR, recently on Thursday in Srinagar. On the occasion, the Lieutenant Governor unveiled J&K Film Policy 2024 and launched a slew of initiatives, including single window portal for film shooting permissions and subsidies, J&K Film Screening Series and Frames of Transformation Photography Competition. He also felicitated the winners of Naya Jammu Kashmir Short Filmmaking Competition. No more. Let's listen to our Srinagar correspondent.
While addressing on the occasion, the Lieutenant Governor Manoj Sinha appreciated the endeavor of Department of Information and Public Relations for hosting a series of events for filmmakers, industry professionals and cinema enthusiasts in the conclave. He said the J&K Film Policy 2024 unveiled today will attract, support and facilitate regional, national and international film production in the Union Territory. Mr. Manoj Sinha said the film-friendly and pragmatic J&K Film Policy will ensure that heaven on earth is truly a heaven for filmmakers. He said, we will provide high-impact infrastructure, support in sourcing locations, and a large pool of professionals, financial incentives to make the filming more attractive in Jammu and Kashmir. Mr. Manoj Sinha highlighted that J&K film policy also provides added incentives for films in local languages, thereby promoting regional cinema of Jammu and Kashmir. He said it encourages filmmakers to hire local talent, which will lead to employment generation and jobs for the local people of Jammu and Kashmir. Speaking on the new initiatives taken by the government, the Lieutenant Governor said the new interventions will have a strong multiplier effect and play a pivotal role in developing J&K, a global film production hub. He said single window portal will ensure efficient handling of intricate formalities and seamless release of subsidies. The Lieutenant Governor said the new initiatives like J&K film screening series is part of systematic and effective reforms to tap into a vibrant and youthful movie-making culture and to provide space for emerging creators and film enthusiasts to exchange ideas on film aesthetics and strengthen Sign Club culture. Mr. Manoj Sinha said, J&K and cinema is a symbol of oneness and cannot be seen separately. He said, they are a perfect match, and for great filmmakers like Raj Kapoor and Yash Chopra, Jammu and Kashmir was not only a shooting destination but also a cultural organism. He said, in the past 5 years, there has been an effort to reconnect J&K with the culture of cinema and theatre. He said, our new initiatives highlight this resurgence. For Parikrama, this is Sunil Kohl from Srinagar, Kashmir.
It's 4:46 and we are together on Parikrama with Athar and Anita. Time now for our defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
आज हम हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एवं स्कूल में जहां अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। आइए मिलते हैं देश की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाले एक ट्रेनी अग्निवीर और उनके ट्रेनर से।
मैं अग्निवीर नीरज भट्ट इन्फेंट्री ट्रेनिंग बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल में ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूं। ये गर्व की बात है कि मुझे अग्निवीर के तौर पर देश सेवा का मौका मिला। बतौर अग्निवीर हम अनुशासन टीमवर्क सीखते हैं, जिसके कारण हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अग्निपथ स्कीम के कारण मैं अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रहा हूं, साथ ही इग्नू से मैं स्नातक की पढ़ाई कर पा रहा हूं। अग्निपथ स्कीम ने मुझे देश का एक सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका दिया है।
आई एम मेजर लक्ष्मण सिंह, पोस्टेड एट इन्फेंट्री ट्रेनिंग बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल एज ट्रेनिंग ऑफिसर। वी ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर कंट्री डिफेंडर, ट्रेनिंग प्रिपेयर देम टू फेस डाइवर्स चैलेंजेस, टू मेक देम फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड प्रोफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग अंडर एडवर्स कंडीशन। अग्निवीर ट्रेनिंग इज मेटिकुलसली क्राफ्टेड, एंश्योर दैट दे आर इक्विप्ड टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ देयर ड्यूटी। आवर फोकस रिमेन ऑन मिलिट्री वैल्यूज, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म and make them a dedicated soldier. The rigorous training improves their physical strength, firing standard, and inculcate team spirit. We conduct progressive tests on regular basis, ascertain their standards, and take corrective measures to improve their performance. Agniveer get opportunity to upgrade their education qualification, to progress in life, and become a responsible citizen.
मैं सुबेदार रविंदर सिंह इन्फेंट्री ट्रेनिंग बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल में ट्रेनिंग रेशियो की ड्यूटी कर रहा हूँ। अग्निपथ स्कीम एक अग्निवीर को न केवल देश सेवा का मौका देती है बल्कि उन्हें फौजी तरतीब भी सिखाती है। फौजी ट्रेनिंग उन्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। एक अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग के दौरान न केवल डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन सीखता है बल्कि हर कदम, हर मौके और हर परिस्थिति का पालन भी करता है। एक अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग के बाद न केवल एक अच्छा फौजी बनता है बल्कि एक सक्षम और जिम्मेवार नागरिक भी बनता है।
और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक मुलाकात ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी अक्षमता को अपनी मजबूती बनाई और शून्य से शिखर तक की यात्रा की। आइए मिलते हैं दिव्यांग माउंटेनियर श्री उदय कुमार से, जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग की एक टीम के साथ कंचनजंगा नेशनल पार्क से अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो की एक्सपेडिशन को अंजाम दे रहे हैं।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अपनी 3 साल की सिविलियन कोटे से मैंने सर्विस की, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी को कुछ और ही मंजूर रहता है। ऐसे ही एक कहानी मेरे साथ हुई। उस दुर्घटना में मेरा पूरा पैर खराब हो चुका था। लगभग 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जब मैं घर आया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चालू कर दिए। अरे इसको मर जाना चाहिए, कौन इसको खिलाएगा, कौन इसकी परिवार की देखभाल करेगा। तभी एक रात आती है जब मेरी वाइफ बोलती है कि आप बिस्तर से खड़े हो जाइए, थोड़ा मैं बिस्तर को ठीक कर करती और नीचे मेरा बेटा बेटी खेल रहे। मैं अपने आप को खड़ा किया लेकिन शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि मैं 2-3 सेकंड ही खड़ा हो पाऊँ और अचानक से अपने बेटे के हाथ गिर गया। मेरा बेटा का हाथ बीचों बीच टूट गया और ये सब मेरी माँ देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन हार्ट अटैक आ गया। मैं सारे चीजों को देख रहा हूँ बट कुछ कर नहीं पा रहा। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि लोग सही कह रहे थे कि मुझे मर जाना अच्छा था और मैंने वही रास्ता चुना और सोचा कि खत्म करते हैं कहानी। इस दिन ऐसा आता है जो नहीं करना चाहिए वो करने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरा बेटा आया और एक क्वेश्चन किया कि पापा झूला क्यों लगा रहे हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। तभी मेरे दीदी मेरी माँ का चेहरा सब सामने आने लगा और मैं पूरा सहम सा गया, अपने बच्चे से लिपट के रोने लगा। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा और ऐसे ऐसे कारनामे करूंगा कि आने वाले दिनों में हर एक वर्ग के लोग मेरी कहानी पढ़े, मेरी कहानी देखें और खुद को मोटिवेट करें। उसी दौरान मेरी मुलाकात ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर से हुई, HMI के जो प्रिंसिपल सर ने मेरे को उस लायक बनाए कि मैं शून्य से शिखर तक जा रहा हूँ। K2K मिशन से अभी किलिमंजारो जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके 7,800 स्क्वायर फीट के तिरंगे लहराएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरव।
And now we will take you on a tour to India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
3 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नाना पाटिल की जयंती होती है, जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की।
उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे।
पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन।
हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली।
देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहां कपास कताई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया।
1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। राष्ट्रवादी नेता देवदास गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया।
उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। वीर शहीद मुनव्वर खान को शत शत नमन।
आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन।
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की गतिविधियां। अनीता,
यस, सिंस पेरिस ओलंपिक्स हैज बीन द topic that we've been discussing always on the sports segment. Archer Deepika Kumari has entered quarterfinals of the women's single event. Deepika demonstrated her prowess in the elimination round, securing a comfortable 6-4 victory over Dutch archer Quinty Rofan. The match was decided in four sets, with Kumari's precision and consistency proving too much for her opponent. Another archer, Bhajan Kaur, will take on Indonesia's Dhyananda Chorunisa in the round of 16 in a short while. In 25 meters air pistol shooting, Manu Bhakar missed out on hat-trick and finishes the campaign with two historic bronze medals. With four athletes left in the fray, Manu was tied at 28 points with Hungary's Veronica Major. And in the five-shot shoot-off, Manu missed the target twice while Major missed only once. Major eventually ended with a bronze medal with 31 hits. And in boxing, India's Nishant Dev will lock horns with Marco Alonso Verde Alvarez of Mexico in the quarterfinals of men's 71 kg category tonight at 12:18 a.m. A win for Nishant in this match will secure another medal for India at Paris Games 2024. In golf, Shubhankar Sharma and Gaganjeet Bhullar will be teeing up for round 3.
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, यानी समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनका आज है जन्मदिवस। अनिता, और इस कड़ी में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को, जिनकी आज जयंती है। जो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त को काव्य क्षेत्र का शिरोमणि कहा जाता है। मैथिली शरण जी की प्रसिद्धि का मूल आधार राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम है। इनके काव्य में राष्ट्र की वाणी मुखर रही है हमेशा। गुप्त जी ने भारत भारती तथा अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रेरणा प्रदान की। इन्होंने अतीत गौरव का भाव जगाकर वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि मानव भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हर धर्म संप्रदाय और मत के प्रति खुला विचार रखना गुप्त के काव्य की महत्वपूर्ण बात है। गुप्त भारतवर्ष के दर्शन पर कहते हैं कि पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और कणाद हैं।
And today is also the birth anniversary of Shakil Badayuni, the Indian Urdu poet, lyricist and songwriter in Hindi as well as Urdu languages. Shakil Badayuni was born in Badayun, Uttar Pradesh. His father, Muhammad Jamal Ahmad Sokhta Qadiri, wanted him to have a successful career. Thus, he arranged Arabic, Urdu, Persian and Hindi tuition for Shakil at home. His inclination towards poetry was not hereditary like other shires, and one of his distant relatives, Ziaul Qadiri Badayuni, was a religious shire. Shakil Masoodi was influenced by him, and contemporary environment of Badayun led him to poetry. When he joined Aligarh Muslim University in 1936, he started participating in inter-college, inter-university mushairas or poetry recitation symposiums and won frequently. And those were the days of shires who wrote about the downtrodden sections of society, their emancipation and the betterment of society. But Shakil had an altogether different taste. His poetry was romantic and close to the heart. Shakil used to say,
बिल्कुल फरमाते हैं कि वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है, है मुद्दा से बेरंग नक्शे मोहब्बत, कोई रंग भरने को जी चाहता है। अनीता, बहुत शानदार उन्होंने शायरी की है, तो एक उनके गीत के मुखड़े का भी जी।
हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब।
शकील बदायूं को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है चौदहवीं का चांद फिल्म के लिए, यानी चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, इस गीत के लिए। इसके अलावा उनके गीतों से सजी फिल्मों की अगर बात करें तो दर्द, चौदहवीं का चांद, मेला, मदर इंडिया, दुलारी, मुगले आजम वगैरह कई सारी फिल्में हैं। एक गीत का और मुखड़ा सुन लेते हैं हल्का सा।
आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
आज ही शशिकला का भी जन्मदिवस है और इसके अलावा संगीतकार जयदीप का भी जन्मदिवस है अनीता, और इसके अलावा कई जानी मानी हस्तियों के जन्मदिवस हैं आज।
वी हार्डली हैव टाइम फॉर मेंशनिंग अदर्स, राइट।
सुनील छेत्री का भी जन्मदिन है जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा आप शास्त्रीय गायक की बात कर रहे थे तो उनकी भी आज जन्मदिवस है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अनुमति दें अतहर सईद और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
Thank you.